ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
இசிலியே நிச்சித் ஹோ கயா, இத்தனை சே சமஜியே கி ஹமாரே ஷரீர் கி விருத்தி மே பிராண காரண ஹை, பிராண வாயு. देखिए, प्राणवायु जब निकल जाता है तो ये शरीर कैसा हो जाता है? मृत हो जाता है. और आप ये भी देख लीजिए कि शाम को भोजन करने के बाद कुछ बच ही गया तो फिर उसका क्या करते हैं? हम रेफ्रिजरेटर में धर देते हैं. रात को रखा, सुबह में आप कैसा पाते हैं? जैसा ही रात को रखा था वैसा कि कुछ कम ज्यादा हो जाता. जैसा रखा है वैसा ही आप पाएंगे. और ये जो शरीर है, रात को हमने भोजन किया तो सुबह में क्या होता? खाली हो जाता है कि जैसा रात को भोजन करते समय जैसा था वैसे ही रहता? खाली हो जाता है. फिर सुबह में चाहिए नाश्ता. फिर वो जो है दोपहर तक होते तो फिर भोजन चाहिए. फिर शाम को पुनः भोजन चाहिए. क्या हो जाता है? ये क्यों भरता नहीं है? कल जैसे बताया था ना, कितना भोजन कर गए होंगे आज तक में हम, लेकिन फिर भी ये भरता नहीं है. क्या होता है? ये प्राणवायु से आलोड़न होकर के उसका वो चक्कर चलता रहता है. इसी से हमारा शरीर बढ़ता रहता है. इसलिए जिसके रहते हुए बढ़ोतरी हुए तो बढ़ने वाला जो अर्थ है वो उसमें घटा कि नहीं? प्राणवायु में बढ़ने का कारण. तो जिसके रहते हुए बढ़ोतरी होवे उसको ब्रह्म कहते हैं. बृहत्वात, बढ़ाने वाला होने से प्राणवायु भी क्या है? ब्रह्म है. अच्छा, तो परमात्मा के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है उपनिषद में, तो उसमें भी यही अर्थ घटता है. देखो, ये संसार की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्म से. और जो वृद्धि होती है वो भी ब्रह्म से, और लय होता है वो ब्रह्म से. अपने यहां कहा गया जिससे ये संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है उनको ब्रह्म कहते हैं. जन्माद्यस्य यतः, इसमें व्यास जी ने बताया. तो ये संसार की जो उत्पत्ति और फिर जो है बढ़ना वो भी ब्रह्म से है. किंतु ये जो हमारा शरीर है उसमें जो प्राणवायु है, उस प्राणवायु के रहते ही हमारा शरीर बढ़ता है. इसलिए कहा त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, प्राणात्मक वायु को ही जो साक्षी प्रत्यक्ष है उसको ही मैं ब्रह्म कहूंगा. आप ही ब्रह्म है भविष्य, यानी आप ही ब्रह्म है. क्योंकि जैसे भी कहा कि हम जो अशन करते हैं, पान करते हैं, उससे शरीर की वृद्धि होती है, ये प्रसिद्ध बात है. इसलिए प्राण ही ब्रह्म रूप से उक्त है. और फिर आगे कहा त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि. स्वामेव यानी कि ये जो प्राणात्मक जो वायु है उनको ही प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, यानी कि अपरोक्ष जो ब्रह्म है वो ब्रह्म स्वरूप आप ही, ऐसा मैं कहूंगा. आप ही अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूप है. पहले जो कहा वो साक्षी प्रत्यक्ष है, और यहां पर कहा कि आप ही प्रत्यक्षम ब्रह्म यानी अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए मैं आपको ये प्राणवायु के लिए कह रहे कि आप ही अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा मैं कहूंगा। और वैसे प्राण के अंदर ये जो बढ़ाने की विकास करने की जो शक्ति है वो आखिर है तो परमात्मा की ही। सूत्र में कहा अत एव प्राण प्राणस्थल लिंगात, ऐसा सूत्र वहां पर ये विचार किया गया कि संसार की वृद्धि प्राण से होती है कि ब्रह्म से होती है। अच्छा, प्राण से यहां पर ये जो वायु लय या ब्रह्म, तो कहा ब्रह्म ही लेना होगा क्योंकि प्राण के अंदर ये जो शक्ति है वो ब्रह्म की है। तल्लिंगात, लिंग यानी चिन्ह, वो ब्रह्म का ही है, इसलिए ये जो प्राण है उनके लिए कहा गया कि आप ही प्रत्यक्षम ब्रह्म यानी अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा मैं कहूंगा। फिर कहा ऋतम वदिष्यामि, प्राणवायु के लिए कह रहे कि आपको मैं ऋतम कहूंगा। ऋतम यानी निश्चित अर्थ, वो उसको कहते हैं ऋतम। आप ही निश्चित अर्थ है, शास्त्रानुसारेण कर्तव्यतया निश्चितार्थम, शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य है कर्म वगैरह, और कर्म वगैरह का जो फल है वो निश्चित है, वो जो निश्चित अर्थ है वो भी वो आप ही, ऐसा मैं कहूंगा। और देखिए कर्म का फल है वो निश्चित है, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके, इसमें भी ये कर्म फल के लिए वो शब्द प्रयोग हुआ। अब ये बात निश्चित है ही, हम लोग चाहे कैसे भी कर्म करें अच्छे या बुरे, तो उनका फल भोग अवश्य होना ही होना, चाहे इहलोक में भोगे या परलोक में या दूसरे शरीर में, किंतु भोग निश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कोटि, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, ऐसा कहा गया। शुभ या अशुभ कर्म का भोग अवश्य होगा ही होगा, अवश्यमेव भोक्तव्य, और वहां किसी की नहीं चलती है। और बिना भोगे उनका क्षय संभव नहीं है। और यहां ये कहा गया कल्प कोटि शतैरपि, बताओ कल्प कोटि शते, 100 करोड़ कल्प, बताओ 100 करोड़ कल्प भी यदि बीत जाए तब भी वो इनका भोगे बिना क्षय नहीं हो सकता है। ज्ञान होगा तो होगा, ज्ञान से तो नाश हो जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ तब 100 करोड़ कल्प भी बीत जाए तब भी वो जो कर्म है वो जिंदा ही रहता है, उसका भोग अवश्य। और कल्प का अर्थ तो आप लोग समझ रहे होंगे, 1000 चतुर्युग का एक कल्प बनता है, बताओ 1000 चतुर्युग। अरे इसलिए तो संसार चल रहा है, नहीं तो संसार थोड़ा चलता, सबके कर्म इतने जल्दी समाप्त तो हो जाते और बिना भोगे समाप्त तो हो जाते तो ये जन्म और मृत्यु की और ये संसार की श्रृंखला थोड़ी ना चलती। और आप घबराइए नहीं, भगवान ने जो है हमको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया है, और जल्दी समाप्त हो जाता तो हम मुक्त थोड़े नहीं हो सकते। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि वो आज प्रयत्न करेगा, कल करेगा, इस जन्म में मैंने तो अगले में प्रयत्न करेगा। ये संसार शुरू रहना चाहिए। अच्छा, ये संसार चलता रहे अच्छा है कि बुरा है बताओ? चलते रहना चाहिए ना। अब मैं कहूंगा कि ये जो मुंबई की ट्रेन है वो चलती रहनी चाहिए कि बंद हो जानी चाहिए बताओ? अब बंद हो जाए तो क्या होगा? जो होगा बंद होने पर, वो संसार को बंद होने पर होगा। समझ में आ गया? उत्तर मिल गया कि नहीं? इसलिए संसार भी चलते रहना चाहिए। किसके लिए? जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते उनके लिए भी, और भोगना चाहते उनके लिए भी। जो भोगना चाहते हैं उनको अभी भोगना है, भोगने से पहले समाप्त हो जाए तो अच्छा लगेगा नहीं? और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो अभी गमन कर रहे हैं, उसको पहुंचे बिना यदि समाप्त हो जाए तब भी अच्छा नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए? दोनों के लिए चलते रहना चाहिए। इसलिए चलता ही रहेगा। भगवान चाहते इन्होंने कर्म किया है तो उनका भोग भी अवश्य मिलना ही चाहिए। और भगवान कहां कह रहे हैं कि तुम अशुभ कर्म करो? भगवान तो जो है आंख मूंद करके बैठे, वो कहते हैं मैं तो कर्म का फल देता हूं। अब ये नहीं कि किसने अशुभ कर्म किया और उनका मैं शुभ फल दू, और शुभ कर्म कर रहा है उनको अशुभ फल दू, ऐसा नहीं। जो कर्म करेगा उनको मैं फल अवश्य दूंगा ही दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र बनाया भगवान ने, फल में नहीं। कर्म कर लिया तो फल जो है अकामेन अभी, नहीं चाहते हुए भी अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य उसमें स्वतंत्र है कि यदि वो अशुभ कर्म का फल नहीं भोगना है, अच्छा नहीं लगता है, तो अशुभ कर्म पहले करे ही नहीं। भगवान ने इतनी स्वतंत्रता दी है, इतने हम स्वतंत्र है कि हम कर्म करे ही नहीं। अब यदि कर लिया तो फिर आप भोगने के लिए तैयार रहे, और वो तैयारी जैसे कि कहा 100 करोड़ कल्प तक रखनी है। ये होना ही होना। आप घबरा रहे क्यों? वो कह रहे तो बड़ा कठिन है। तो अशुभ कर्म वाला घबराएगा, शुभ कर्म का वाला क्यों घबराएगा बताओ? शुभ कर्म का फल तो हमको चाहिए ही चाहिए, थोड़ा ना छोड़ेंगे। प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, सुबह में 4 बजे उठ करके गंगा और यमुना का जहां पर संगम है वहां जाकर के सुबह में 4 बजे जाकर के इतने ठंडे पानी में स्नान करेंगे तो कोई वो सरल काम है क्या? ऐसा जो है आप सत्कर्म करें और कहे कि फल न भगवान दे तो क्या होगा? मिलना चाहिए ना? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस युग में नहीं तो अगले युग में, इस कल्प में नहीं तो अगले कल्प में मिलना चाहिए कि नहीं? अब बताओ। तो क्या? हाँ, तब तो ठीक है, मिलना ही चाहिए। तब अशुभ कर्म से हम क्यों भागे? अशुभ कर्म का फल भी होगा, इससे जैसे कहा कि अशुभ कर्म से हम बचे, ठीक है कि नहीं? इसलिए कर्म का फल जो है वो रितम है, निश्चित है, मिलना ही है। और कर्म फल में भोगने में भी ये प्राणवायु कारण है। देखिए, यदि ऊर्ध्वगमन जो है अच्छे कर्म का फल है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्वलोक यानी मनुष्य से जो उच्च शरीर की प्राप्ति यानी देवादि शरीर की प्राप्ति, ऊपर से यानी कि ऐसे ऊपर नहीं समझना और ऐसे नीचे नहीं समझना। आप कहेंगे ऊर्ध्व से यानी कि हम ऊपर ऐसे आकाश की ओर, ऊर्ध्व अध से नीचे की ओर, ऐसा नहीं। ऊर्ध्व लोग ऊपर होगा, अर्ध लोग नीचे होगा, ऐसे नहीं। अभिप्राय यह है कि मनुष्य जन्म है वो मध्यम है और देवादि का जो जन्म है वो इससे उत्तम है। ऊर्ध्वम का अर्थ है उत्तम। तो उत्तम को बताने के लिए ये नहीं कि इससे ऊपर वो उत्तम, ये एक साथ में बैठे हुए में भी उत्तम मध्यम और अधम हो सकते हैं। तो देवादि का शरीर क्या है? तो उत्तम है। और तिर्यगादि शरीर वो अधम है। तो इस तरह से कर्म का फल उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ रूप से अवश्य मिलेगा। ये इष्टम अनिष्टम मिश्रम, ये तीन प्रकार का कर्म का फल भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बताया, तो वो अवश्य भोगना ही है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का जो है पाप कर्म ही ज्यादा है तो जब मरते समय वो अपान वायु बलवान हो जाएगा। अपान वायु, तो अपान वायु है उनको नीचे की ओर गमन कराएगा। और यदि पुण्य कर्म अतिशय है तो उसका उदान वायु बलवान हो जाएगा, तो वो ऊर्ध्व गमन कराएगा। ये जो सूक्ष्म शरीर को कर्म फल के लिए जो आगे बढ़ाने वाला, ले जाने वाला, ये प्राण है। प्राण के द्वारा जो उनका आना जाना होता है, प्राण के द्वारा ही वृद्धि और क्षय होता है। इसमें ये जो है सब कारण है प्राणवायु। इसलिए प्राणवायु से प्रार्थना की जाती है कि आपको मैं ऋतम ऋतम कहूंगा। इससे हमारे मन में निश्चय बना रहे कि कर्म का फल निश्चित है, ताकि हम पुण्य की ओर प्रवृत्ति करें और पाप से बचे। ये हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। सत्यम वदिष्यामि कहा, सत्यम वदिष्यामि, सत्यम का अभिप्राय है पूर्व निश्चित जो वाचा है उससे उच्चार्यमाण जो शब्द है वो सत्य से शब्दित है। सत्य शब्दितम, जो सत्य है वो भी मैं आपको कहूंगा, यानी वाणी का सत्य, वाणी से सत्यवदन। और वो सत्यवदन यानी सत्य, प्रिय और हित, वो सत्य, प्रिय और हितकारी वाणी जो है वो भी आप ही है। सत्यम वदिष्यामि, आप कह रहे थे ही है। तो यहां पर जो है इस तरह से प्राणवायु के लिए कहा गया। अब आगे देखो, एक कुछ बात में मोड़ आ रहा है। तत् माम अवतु तद वक्तारम अवतु। अब ऐसे प्राणवायु से ये भावना की जा रही है, इस प्रकार का जो सर्व सामर्थ्यवान ये प्राणवायु है उससे कहा जा रहा है तत् माम अवतु। तत् यानी कि ये जो सूत्रात्मक समष्टि रूप और प्राणात्मक व्यष्टि रूप दोनों, वो जिसको ब्रह्म से कहा गया, ब्रह्म शब्द से कहा गया, वो प्राणवायु और समष्टि और व्यष्टि प्राणवायु से ये जो प्रार्थना करने वाले के लिए कहा गया कि ये इस प्रकार की उससे भावना करते हैं कि माम अवतु, ऐसा प्राणवायु मेरी रक्षा करे। माम यानी शिष्यम, मैं शिष्य हूं, ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर रहा हूं, तो ऐसे जो मैं शिष्य हूं उसकी अवतु यानी पालन करे। प्राणवायु से प्रार्थना की गई कि ऐसा जो प्राणवायु है वो मेरी रक्षा करे, मेरा पालन करे। तो उससे पालन करना क्या है? क्या वो आज चारों ओर आगे पीछे कोई बंदूक लेकर के घूमे क्या? ऐसे नहीं, वो पालन की बात यहां नहीं है। पालन का अभिप्राय है विद्या ग्रहण शक्ति हमको प्रदान करे, यही पालन है। विद्या ग्रहण शक्ति हमारे अंदर आए, उसमें जो विघ्न है वो दूर हो जाए, ये पालन का अर्थ है। विद्या ग्रहण की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। विद्या ग्रहण की शक्ति यानी नई कोई शक्ति अंदर आ जाए, ऐसा नहीं, प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाए। सामर्थ्य तो विद्यमान ही है, किंतु जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाए। यहां तो जो है प्रतिबंध यानी कि विघ्न, विघ्न की निवृत्ति हो जाए तो हम जैसे कहीं जा रहे हैं, आप फुरपाट गाड़ी लेकर के जा रहे और लाल बत्ती आ गई तो क्या हुआ? प्रतिबंध हो गया। तो फिर आप कहीं समारोह में जा रहे, देरी हो गई, वहां पूछेंगे अरे आप तो बड़े देरी से आए, तो कह रहे क्या करे? अब रास्ते में ऐसे प्रतिबंध आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आपकी गाड़ी में शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, इसलिए आप देरी से पहुंचे, ऐसा नहीं था। आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे चल सकती है, सामर्थ्य उसमें था, किंतु क्या हुआ? आगंतुक प्रतिबंध आ गया, आप उस प्रतिबंध को आप नहीं तोड़ सके, इसलिए प्रतिबंध के रहते हुए साथ साथ में आपको चलना पड़ा, इसी के कारण क्या हो गया? आप लेट पहुंचे, ठीक है कि नहीं? तो हमारा ये जो शरीर है ना, वो परमात्मा ने हमको इसलिए दिया है कि विद्या ग्रहण करनी है। तो विद्या ग्रहण का सामर्थ्य हमारे अंदर जो है ही, किंतु ऐसे विघ्न है, स्थायी अस्थायी छोटे बड़े, वो विघ्न के कारण हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उससे प्रार्थना की गई कि हमारे अंदर विद्या ग्रहण शक्ति सामर्थ्य बरकरार रहे। ऐसा आप हमारे लिए वातावरण खड़ा कीजिए कि हम निर्विघ्न रूप से ये विद्या का ग्रहण कर सके। अब ये तो शिष्य ने अपने लिए प्रार्थना की। अब ठीक है, शिष्य के लिए ऐसा निर्विघ्न वातावरण खड़ा हो जाए, लेकिन आचार्य ही ना मिले तो आचार्य भी मिलने चाहिए ना, आचार्य की भी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि तद वक्तारम अवतु, तत् मने वही प्राण प्राणवायु, समष्टि और व्यष्टि प्राणवायु से पुनः भावना की गई कि वक्तारम अवतु। यदि गुरुजी नहीं रहेंगे तो मेरे को विद्या कौन देंगे? गुरुजी का स्वास्थ्य भी कैसा रहना चाहिए? ठीक रहना चाहिए। इसलिए कहा वक्तारम हो तो आप हमारे जो वक्ता है, उपदेष्टारम आचार्यम, जो उपदेष्टा है हमारे, आचार्य है, गुरु है, उनका भी आप अवतु यानी कि पालन करें। तो देखिए, पहले तो अवतु का अर्थ किया विद्या ग्रहण शक्ति प्रदान करके पालन करें, और आचार्य को तो कहते हैं वक्तृत्व सामर्थ्य प्रदान करें उनको। उससे कहा कि नहीं वक्तारम अवतु, वक्ता की रक्षा करे यानी पालन करे। कैसे? उनको आप वक्तृत्व शक्ति प्रदान करें ताकि वो हमको उपदेश दे। तो इस तरह से हमें विद्या ग्रहण कर सकूं। तो इस तरह से दो बार यहां पर कहा गया है। तो साधन काल में शिष्य और आचार्य के अंदर श्रोतृत्व और वक्तृत्व शक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो ऐसे प्रधान विषयक प्रार्थना कह करके फिर जो है चलो श्रवण भी कर लिया, लेकिन विद्या का फल भी मिलना चाहिए ना। तो पुनः जो तद्वक्ता औतुमाम औतु वक्तारम का न, उसमें फल सिद्धि बताइए कि फल काले फल सिद्ध्यतम, फल भी मिले, केवल श्रवण कर ले और श्रवण का जो फल साक्षात्कार न हो ये भी नहीं, इसलिए फल भी मिलना चाहिए। इसलिए औतु माम औतु उक्तारम से कहा गया कि हमको ये ब्रह्म विद्या का जो है फल साक्षात्कार और निर्विशेष मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। ये इतनी बड़ी ये दिव्य प्रार्थना है, इसमें इस तरह की भावना की गई है। उसको ये जो उनका अर्थ है उस अर्थ समझ करके हमको ये मंगलाचरण का उच्चारण रोज पाठ करना चाहिए। भगवान की कृपा होगी तो कल करेंगे।